તારીખ 11/11/1995 શ્રીમદ રાજચંદ્ર પત્રાંક 466 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું મુંબઈમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર
126 જીવ કો સત્સંગ હોને કે બાદ કોઈ ભી કદાગ્ર मतमतांतर आदि दोष वो छोड़ सकता न हो, खुद छोड़ने का प्रयास करता न हो, क्या खुद को छोड़ने का अभिप्राय नहीं हो, तो फिर उसको संसार परिभ्रमण से छूटने की आशा नहीं रखनी चाहिए। मतलब इसका परिभ्रमण बहुत है तभी इनके ऐसे परिणाम चलते हैं। जिसको संसार का परिभ्रमण से छूटना है उसको तो ये परिणाम छोड़ने का प्रयास चलेगा और उनका अभिप्राय यही रहेगा कि मुझे ये परिणाम छोड़ देना है। अंश खुद किसी को आदेश बात, आदेश बात माने कि ऐसा करना, ऐसा नहीं कहते। मैंने हम किसी को आदेश नहीं देते तो आप ऐसा करो वैसा नहीं करो, ऐसा हम कभी नहीं कहते। बार बार पूछो इस विषय में, आप बार बार पूछो तो भी यह बात हमारी स्मृति में होती है। यानी कई लोग बार बार पूछते हम क्या करें, हमको कोई आदेश दो, आप जैसा आदेश देंगे वैसा करेंगे, फिर भी हमारे स्मरण में बात होती है कि हमको किसी को आदेश देना नहीं है, हम आदेश नहीं देंगे। हमारे संग में आए हुए जीव को, किसी जीव को अब तक हमने ऐसा बताया है, ऐसा बताया नहीं है कि तुमको ऐसा वर्तन करना चाहिए, ऐसा कभी नहीं बताया। तुम ऐसा वर्तन करो, ऐसा वर्तन नहीं करो, ऐसा हमने कभी हमारे संग में आने वाले को नहीं बताया है। मात्र शिक्षा बोध तरीके कुछ बताया होगा तो जनाया होगा, शिक्षा बोध मैंने शिखामण, ऐसा हमको ऐसा लगता है कि ऐसा करना चाहिए। आपको जैसा ठीक लगे, जैसा कर सकते हो वैसा करो। शिक्षा बोध दिया है मैंने, शिखामण दिया है गुजराती, मैंने शिखामण कही जैसे शिखामण आप इसे आम कराए ना, आम न कराए। पछी जीव को, मुमुक्षु को तो अपनी ताकत पे काम करना है। किसी के कहने से कोई काम करता है इसमें खुद का बल नहीं होता, तो खुद ही कमजोर होता है तो वो काम कैसे करेगा। काम तो अपनी ताकत पे करना है जिसको भी करना है, जो अपनी ताकत पे काम करता है उसको तो संकेत मात्र बहुत होता है, तेजी को इशारा काफी है। ये अच्छे जात के घोड़े होते हैं ना, तो उसका सवार है उसको पैर से एक उंगली अंगूठा मारता है, टच करता है वो भगने लगता है। और जो उस जाति का नहीं है उसको बार बार चाबुक मारो कितना भी चले गए नहीं आगे। इसलिए ताकत तो अपनी चाहिए। हमारा उदय ऐसा है कि ऐसी उपदेशवाद बात करते हुए वाणी पीछे खींच जाती है, वाणी पाछी खेचाए से। उपदेश बात करते हुए हमको संकोच होता है, वाणी पाछी खेचाए छे, हमको संकोच होता है कि उसको क्या आदेश दे, क्या उपदेश दे। खुद को हमको ही संकोच हो जाता है बोलते हुए। साधारण कोई प्रश्न पूछता है तो वाणी प्रकाश करती है, वाणी बराबर चलती है। कोई साधारण जनरल बात होती है, बात बराबर कहते हैं, व्यक्तिगत आदेश नहीं देते। और उपदेश बात में तो वाणी पीछे खींची जाती है, इसलिए ऐसा सहज होता है, इसलिए हम ऐसा जानते हैं कि अब ऐसा कोई उपदेश देने का हमारा उदय नहीं है। उपदेश देने का हमारा उदय नहीं है ऐसा हमको लगता है। वाणी क्यों चलती नहीं है उपदेश देने में, आदेश देने में क्यों वाणी काम नहीं करती है? लगता है कि हमारा उदय ऐसा नहीं है। उदय होता तो सहज चल जाता, लेकिन नहीं चलता है तो लगता है कि ऐसा हमारा उदय नहीं है। अब कहते हैं कि पूर्व में हो गए ऐसे अनंत ज्ञानी यद्यपि महाज्ञानी हो गए हैं, भूतकाल में बहुत से महाज्ञानी हो गए हैं, परंतु उनसे कुछ जीव का दोष जाता नहीं। भूतकाल के जो ज्ञानी हो गए हैं उनसे जीव का दोष नहीं जाता। वर्तमान में जो दोष है वो पूर्व के भूतकाल के ज्ञानी से नहीं जाएगा। इसलिए कि वर्तमान में जीव में मान हो, मान चढ़ गया हो, तो पूर्व में हुए ज्ञानी कहने को नहीं आएंगे कि तेरे को मान चढ़ गया है। मान ऐसी चीज है कि खुद को पता नहीं चलता, मेरे में मान है अभिमान है वो खुद को नहीं पता चलता। और भूतकाल के ज्ञानी तो कहने को आएंगे नहीं कि मान का दोष निकालो फिर तुम्हारा काम होगा, वो तो कैसे कहने को आएंगे, वो तो अपने रास्ते पे आगे बढ़ गए, कहीं तो सिद्धालय में चले गए, कोई है नहीं कहीं लोग तो। कि पूर्व में हुए अनंत ज्ञानी महाज्ञानी हुए हैं परंतु उनसे जीव का दोष नहीं जाता। और अब जीव में मान हो तो पूर्व में जो ज्ञानी हुए वो कहने को आएंगे नहीं, परंतु हाल जो प्रत्यक्ष ज्ञानी विराजमान हो वही दोष को बता सके और निकाल सके, बता भी सके और निकालने का रास्ता भी बता सके, तो निकाल सके ऐसा कहते हैं। दृष्टांत देते हैं इस विषय में कि जैसे दूर का क्षीर समुद्र, यहां तृषातुर की तृषा क्षीर समुद्र से छिपेगी नहीं, फिर मैंने दूध, दूध का भी समुद्र है, जैसे खारा पानी का समुद्र है वैसे आगे जाकर के क्षीर समुद्र भी है, दूध का समुद्र होता है, मैंने बहुत मीठा पानी होता है, दूध जैसा, दूध जैसा मीठा पानी हो जिसे तृषा छिप सकती है, लेकिन वो कहीं के असंख्य योजन दूर है, क्या किस काम का? एक क्षीर समुद्र हमारे लिए किस काम का? या हमारे लिए तो कोई काम में नहीं आएगा, परंतु एक ठंडा मीठा मैंने खारा नहीं, ऐसा सादा पानी का एक कलश मिल जाए, अभी मिल जाए वर्तमान में, तो इससे तृषा छिपेगी और मरने को बच जाएगा, वरना तृषा तो मर जाएगा, तृषा से मर जाएगा, पानी नहीं मिलेगा तो मर जाएगा। इसलिए दूर का पानी काम में नहीं आता, कितना भी समुद्र भरा हो। ऐसे अनंत महाज्ञानी हो गए, अनंत तीर्थंकर हो गए, हमारे काम में तो कोई आने वाले नहीं। वर्तमान में कोई ज्ञानी होगा तो हमको काम में आ सकता है, हमारा दोष बताएगा और निकालेगा भी। लेकिन होता है क्या कि ज्ञानी वर्तमान में होते हैं तब तो जानते नहीं, पहचानते नहीं, शंका को शंका करते हैं या अफवाह में आ जाते हैं या दूर से ही नजदीक आने का मन नहीं होता है। जब वो स्वर्ग में चले जाते हैं फिर इसका छवि लगा करके सब पूजा करने लग जाते हैं, प्रायः ऐसा बनता है। वर्तमान को तो पहचाने नहीं और जब वो चले जाएंगे फिर उनके महिमा करने लग जाएंगे, तो उससे लाभ तो होता नहीं। ऐसा होने से जीव को लाभ तो होता नहीं। आगे कहते हैं कि जीव अपनी कल्पना से कल्पता है कि ध्यान से कल्याण हो जाए या समाधि से या योग से या ऐसे ऐसे किसी दूसरे कोई न कोई प्रकार से कल्पना कर लेता है, मैं ध्यान करूंगा मेरा कल्याण हो जाएगा, या मैं कोई योग का साधन करूंगा, या मैं शास्त्र पढ़ूंगा, या मैं तपश्चर्या उपवास आदि कर लूंगा, या भक्ति पूजा कर लूंगा, या यात्रा करूंगा, मेरा कल्याण होएगा। कल्पना करता है, कैसे कल्याण होता है वो उनको पता नहीं है, कल्पना कर लेता है कि ऐसा करने से अनेक प्रकार के बाह्य साधन है धर्म के, तो कुछ न कुछ करने का उनको मन होता है, अपनी कल्पना में जो भी जचता है वो करने लग जाता है। परंतु इससे जीव का कल्याण होता नहीं, इस प्रकार से जीव का कल्याण नहीं होता। जीव का कल्याण होना तो ज्ञानी पुरुष के लक्ष्य में होता है, ज्ञानी पुरुष के ख्याल में ज्ञान में ये बात होती है कि यह जीव कहाँ खड़ा है, और उसको पहला कदम कहाँ उठाना चाहिए। वो ज्ञानी के लक्ष्य में होता है, ज्ञानी के ज्ञान में होता है, जीव को खुद को पता नहीं होता है मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो खुद को मालूम नहीं होता है, क्योंकि वो खुद तो अंधा है, उनको तो दिशा सूझ है ही नहीं। मेरे को एक कदम भी कौन सी दिशा में उठाना चाहिए वो उनको मालूम नहीं है, कुछ ना कुछ करता है। और यह परम सत्संग से समझ में आ सकता है, जब वो ज्ञानी के संग में जाता है सत्संग करता है तब उनको मालूम पड़ता है कि मुझे क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए, तो मैं करता हूँ मैं बंद करना चाहिए और मुझे क्या नया चालू करना चाहिए, वो उसको बाद में पता सत्संग से पता चलता है। बिना सत्संग बात का पता कल्याण का विषय में कोई पूछ पता नहीं चलता है। वो परम सत्संग करके समझ में आता है, समझ सकते हैं, इसलिए वैसे विकल्प करना छोड़ देना, मैंने अपने आप कुछ न कुछ धर्म साधन करने का विकल्प और अभिप्राय है उसको छोड़ देना है। मैं कुछ जानता नहीं, मैं कुछ समझता नहीं, और कहीं उल्टा पड़ जाएगा तो और चक्कर में आ जाऊंगा मैं, इसलिए ज्ञानी के समागम से अपना कल्याण समझना, बाद में जो कुछ करना है वो करना है, पहले तो समझना है फिर करने की बात है। समझे ही नहीं तो करे क्या, बिना समझे जो भी करेगा इसका तो कोई मतलब नहीं है। व्यापार धंधा में ऐसा नहीं करता। देखो कोई कहेगा देखो भाई इस धंधा में हमने बहुत पैसे कमाए, तुम भी कमा लो ऐसा धंधा करके, तो क्या करेगा? तो मेरी समझ में आने दो बात, आप कैसे करते हो, मेरे लिए वो बात ठीक है कि नहीं है, आपकी बात अलग है मेरी बात अलग है, वहां सब प्रकार का दिमाग चलाएगा। पूरी छानबीन करने के बाद उनको लगेगा कि नहीं करने लायक है तो करेगा, वरना तो 10-20 जने आएंगे वो करो वो करो वो करो वो करो, क्या करेगा? जो बात उनके समझ में आएगा वो करेगा। और धर्म के क्षेत्र में अंधश्रद्धा से जो जीव चलते हैं वो प्राय अपने को नुकसान करते हैं, परिभ्रमण को बढ़ाते हैं और मुक्ति के मार्ग से दूर चले जाते हैं। जीव को मुख्य में मुख्य यह बात विशेष ध्यान देने योग्य है, जीव को मुख्य में मुख्य वजन दिया है कि यह बात विशेष ध्यान देने जैसी है कि सत्संग मिला हो तो, यदि उसको सत्संग प्राप्त हुआ हो तो सत्संग में सुना हुआ शिक्षा बोध परिणाम को प्राप्त करके सहज में जीव में उत्पन्न हुए कदाग्र आदि दोस्तों छूट ही जाना चाहिए कि जिससे सत्संग का अवनवाद पना बोलने का उल्टा बोलने का प्रसंग दूसरे जीवों को आए नहीं। ये बात मुख्य है, विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है। फिर से कि सत्संग प्राप्त हुआ हो तो सत्संग में जो भी हमको ग्रहण करने योग्य जो जो बात सुनने में आई हो उसका परिणमन हुआ कि नहीं हुआ वो बात की मुख्यता आनी चाहिए। मेरे लायक जो जो बात मेरी समझ में आई है उसमें मैंने कोई फेरफार किया कि नहीं किया, और जो भी दोष है उसमें कदाग्र मतांतर आदि के जो दोष है वो तो छूट ही जाना चाहिए। वो तो कम नहीं छूटता है, लोक संज्ञा विशेष होती है तो नहीं छूटता है। तो लोक संज्ञा तो मुमुक्षुता के प्रारंभ में ही छूट जानी चाहिए, क्योंकि इसमें ज्यादा पुरुषार्थ की जरूरत नहीं है। फिर कुटुंब प्रतिबंध में थोड़ा पुरुषार्थ और लगता है, क्योंकि कुटुंबियों से स्नेह ज्यादा होता है, कुछ स्वार्थ भी होता है, बहुत सी बातें होती है, तो उसमें थोड़ी ताकत लगानी पड़ती है। लेकिन समाज से तो उतना लेना देना नहीं है, वो तो सहज मात्र में थोड़ा भी बल होता है तो समाज वालों को तो वो उपेक्षा कर सकता है। और अपना परिणमन ऐसा होना चाहिए, ये बात थोड़ा वजनदार है कि सत्संग का अवर्णवादपना बोलने का प्रसंग दूसरे जीव को नहीं आए। हमारे में कोई ऐसा दोष नहीं होना चाहिए कि जिस कारण से धर्म की अपकीर्ति हो या दूसरे जीवों को बोलने का कोई साधन मिल जाए, कारण मिल जाए, ऐसा दोष हमारे में सहज होना नहीं चाहिए। वरना क्या बोलेगा लोग कि देखो भाई ऐसे तो सत्संग में जाता है लेकिन उसमें कोई फर्क तो दिखता नहीं है, लोभी था उतना के उतना लोभी है, क्रोधी था उतना का उतना क्रोधी है, मायाचारी था झूठ बोलता था वो तो उतना का उतना है, कोई फर्क दिखता नहीं है। तो वैसे के वैसे कोई फर्क नहीं जब पड़ता है तो लोगों को सत्संग का अवर्णवाद, अवर्णवाद मैंने क्या कि सत्संग करने से तो कोई दोष होता नहीं या सत्संग के कारण से तो दोष होता नहीं, लेकिन आरोप आएगा सत्संग पर, दोष तो इनका है लेकिन आरोप आएगा सत्संग पर आएगा, या सत्पुरुष पर आरोप आएगा कि उनके पास जाता है लेकिन है तो है वैसा का वैसा, कोई फेरफार तो हुआ ही नहीं। इसका मतलब ये है, सीधी बात ले वे दो कि सत्संग में आने वाले मुमुक्षु में इतना फर्क हो जाना चाहिए कि अगर इसको कोई मिले पूर्व के परिचित लोग तो वो चौंक जाए, अरे ये आदमी तो पहले ऐसा था अब इतना फेरफार कहां से हो गया, बड़ा चेंज आ गया, लगता है कि इसे कोई सत्पुरुष मिला है वरना ऐसा चेंज आ ही नहीं सकता। ऐसा फेरफार हो जाना चाहिए तब तो सत्संग के ऊपर आरोप नहीं आएगा, वरना तो सत्संग पर आरोप आएगा कि वो तो वैसा ही है, सत्संग करता है क्या है, कोई बात में दम होगा नहीं, सब ऐसे ही होंगे, ये ऐसा है तो वहां सब ऐसे ही होंगे, दूसरे पर भी वही बात वही आरोप लग जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी प्रसंग हो, कोई भी उदय हो, कोई भी बात हो, विवेक से काम लें और विवेक के साथ अपनी दृढ़ता, ऐसा नहीं है कि दृढ़ता खो करके ढीलाढ़ हो करके काम करे, वो भी नहीं है, दृढ़ता से काम लें। ज्ञानी पुरुष ने कहने का बाकी नहीं रखा, ज्ञानियों ने कहने का कोई बाकी नहीं रखा है, बहुत बातें कितने भी स्पष्टीकरण बहुत से खुलासा आ जाते हैं परंतु जीव ने करने का बाकी रखा है, सुनने का सब कुछ मिला है, कहने वाले ने कहना सब कुछ कह दिया है और अपना काम कर सके ऐसा अवसर भी आ चुका है, सब अवसर आ चुका है, थोड़ा बहुत नहीं सब अवसर आ चुका है, शरीर स्वास्थ्य बराबर है और कोई रोटी की भी चिंता नहीं है, करना चाहे तो कर सकता है, इतनी कोई यहां उपाधि नहीं होती है, ये मध्यम पुण्य पाप का योग होता है सबको, न तीव्र पाप का योग होता है न बहुत देवलोक में होता है, ऐसा तीव्र पुण्य का भी उदय नहीं होता है, तो उतना रस तो जाएगा नहीं, अब अपना काम करना चाहे तो कर सकता है बराबर, लेकिन खुद का नियत नहीं है और खुद को लगन नहीं है अपने कल्याण का कल्याण करने के तो कार्य करेगा नहीं। ज्ञानी पुरुष ने कहने का बाकी नहीं रखा परंतु जीव ने करने का बाकी रखा है, परंतु ऐसा युगानुयोग कभी ही किसी ही काल में उदय में आता है, ये समझ लेना। बार बार ऐसा युगानुयोग नहीं मिलता कि ये बात समझने का मौका मिले, शांति से बैठ करके विचार करे, समझे, सुने, ये मौका बार बार नहीं आता है। वो देखो जगत के जीवों की परिस्थिति, देखो ये परमार्थ की बात कितने जीव के कान पे पड़ती है। अपने एक बिल्डिंग में रहते हैं ना, इसके पड़ोसी को देख लो कितने हैं और कितने को सुनने को मिलता है, अगल बगल में तो फिर देखने की जरूरत नहीं। तो ऐसा युगानुयोग तो कभी ही होता है। वांछा से रहित वैसी महात्मा की भक्ति तो केवल कल्याणकारक ही होती है। और कोई ज्ञानी मिल गए और इसकी भक्ति वांछा रहित किया, कैसे? जिसको निष्काम भक्ति कहते हैं तो अवश्य कल्याणकारक होती ही है। ऐसी भक्ति तो फायदामंद होती ही है, भले ही पहचान नहीं हो तो भी। क्या प्रश्न हमारे यहाँ चलता है कि जीव भक्ति करता है उसमें पहचान वाला भी करता है और बिना पहचान वाला भी करता है। अब बिना पहचान वाला जो करता है उसमें दो प्रकार है। बिना पहचान वाले करने में कोई तो वांछा से करता है और कोई निष्काम भावना से भी करता है, दो प्रकार से होती है। तो जो निष्काम भाव से होती है उसका तो आत्म कल्याण होगा, वो कल्याणकारक होती है, निपस्ती है भक्ति का, भक्ति कल्याणकारक निपस्ती है ऐसा लिखा है, निवड़े छे, निवड़े मैंने निष्पन्न होती है। वांछा रहित भक्ति निर्मलता को ले आती है। और मुमुक्षु की भूमिका में निर्मल मति ज्ञान होवे तो उसको आत्म कल्याण की सूझ आती है, वो कहीं और जगह नहीं फंसेगा। उसको मालूम पड़ जाएगा अपने ज्ञान की मति की निर्मलता में कि मेरा कल्याण कहाँ है, मेरा कल्याण कहाँ नहीं है। अपने हित रूप और अहित रूप परिणामों को पहचानने की शक्ति उसमें चालू हो जाएगी, या अपने प्रयोजन के विषय में भी वो सतर्क हो जाएगा। वांछा से रहित वैसी महात्मा की भक्ति तो केवल कल्याणकारक ही निष्पन्न होती है, परंतु कभी वैसी वांछा महात्मा में ज्ञानी के प्रति हुई और वैसी प्रवृत्ति भी हो चुकी, भक्ति सेवा कुछ भी वांछा से हो चुकी, तो भी यही वांछा जो असत्पुरुष में की होती और इसका जो फल आता इसकी बराबरी में, इसका फल कोई अलग प्रकार का आने का संभव है। क्या कहा? वांछा सहित भक्ति दो जगह होती है, एक सत्पुरुष के प्रति भी होती है और एक अज्ञानियों के प्रति भी होती है। तो भक्ति करने वाले को तो मंद कषाय होता है, वो तो अनजाना है, ओग संज्ञा से करता है। इसका फल अज्ञानी के प्रति जो आएगा और ज्ञानी की भक्ति करेगा और जो फल आएगा उसमें भी अंतर होएगा, उसमें भी फर्क पड़ता है। वांछा से किया तो भी उतना तो फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा, क्यों? ये सामने ज्ञानी है, सत्पुरुष है, इसलिए। ऐसे समय में, भक्ति के काल के माल काल में, सत्पुरुष के प्रति यदि निशंगपना रहा हो तो आगे जाकर के भविष्य काल में उनके पास से सन्मार्ग की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि और जगह तो नहीं चिपका, सत्पुरुष के पीछे तो लगा है, पर उसको निशंकता हुई, पहचान नहीं रही, लेकिन फिर भी निशंकता रही कि नहीं ज्ञानी है, यानी मान करके हम चलते हैं और उनकी भक्ति करता है, तो आगे जा करके उनको सन्मार्ग की प्राप्ति होना संभव है, क्योंकि संग तो रहता है, भक्ति होने से संग तो रहता है, संग तो बना रहता है, तो सत्संग बना रहता है तो कभी ना कभी वो जागृत हो जाएगा, उसकी योग्यता पलटेगी। तो ज्ञानी भी उसको कहेगा कि क्या ऐसा कर, ऐसा रहना है तुम, हमारे संग में आए हो तो क्या ऐसा ही रहना है तुमको, जितना हो सके उतना ज्यादा संग करने लग गया। एक दफे कृपालु देव को मालूम था कि वो पहचानता तो नहीं है, फिर भी संग क्यों करता है, उसको पहचान तो नहीं आई, फिर भी काफी संग में रहता है। तो एक दफे एक कमरे में बैठे थे, उसको बुलाया एकांत में, अकेले में बुला करके पूछा कि तुम संग ज्यादा करते हो हमारा, तो हमारे में क्या देखा तुमने, क्यों करता है तुम? पूछने का अभिप्राय था कि इसका इधर आने का मकसद क्या है। देखो आप तो बड़े हैं, महात्मा लोग हैं, हम तो ज्यादा कुछ जानते समझते नहीं है, लेकिन लगता है कि आपके पास संग में रहेंगे तो कभी न कभी हमारी बारी भी आ जाएगी। इतना निशंकपना हमको है कि कभी न कभी हमारी बारी भी आएगी। आप बहुत सी बातें करते हैं, हमारी इतनी कैपेसिटी नहीं है, इतनी योग्यता नहीं है सब बात समझ सके, हम तो ऐसे नहीं है समझदार, लेकिन लगा है कि आपके संग में रहेंगे तो कभी हमारी बारी भी आ जाएगी, इसलिए भाव रहता है कि आपके संग में ज्यादा रहें। गुरुपाल उदय ने बोला कि जब तो ठीक है, आया करो तुम। उसका निषेध नहीं किया, उनके लिए निषेध नहीं किया, इसलिए कहते हैं कि भले ही सत्पुरुष के प्रति वांछा सहित भक्ति हो गई हो, जिसको समझने का मिला उसको तो वांछा नहीं रखनी चाहिए, लेकिन समझ नहीं हो, बिन समझ में कभी हो गया हो, ऐसे काल में भी जो निशंक पड़ा रहा हो कि ज्ञानी पुरुष से कभी न कभी हमारा कल्याण होगा, तो भविष्य में उनके पास से सन्मार्ग की प्राप्ति हो सकती है, वो चांस है उसको। चार प्रकार के जीव जगत में होते हैं। एक तो ज्ञानी के विरोध करने वाले होते हैं, जो सबसे खराब होते हैं, ज्ञानी को भी छोड़ते नहीं है, उनका होनार ही कोई ऐसा है कि बिना मतलब वो ज्ञानी का विरोध कर लेता है। ऐसे जीवों को तो बहुत परिभ्रमण लंबा होता है, तो वो तो दया के पात्र हैं, करुणा के पात्र हैं। बहुभाग जीव जगत के बहुभाग मोटी बड़ी संख्या में जीव ऐसे होते हैं कि जो हमेशा ज्ञानी से उपेक्षित रहे हैं, कौन ज्ञानी है कौन अज्ञानी है हम क्या जाने, हम तो हमारा काम से मतलब है, हमको कोई ज्ञानी वानी का विषय में कोई हमको माथा लगाना नहीं। तो उपेक्षा करते हैं, विरोध नहीं करते हैं। कोई बोलेंगे भाई अच्छे ज्ञानी आए हैं जरा आओ थोड़ा समझो बात, हमको हमको नहीं देता, ऐसी बातों में हम पढ़ना नहीं चाहते, हमको उसकी रुचि नहीं काम करती, मतलब रुचता नहीं है, तो उपेक्षा करेगा, विरोध नहीं करेगा लेकिन उपेक्षा करेगा। फिर कोई जीव ऐसे होते हैं कि ज्ञानी की भक्ति और संग करने लग जाता है बिना समझे भी, ऐसे भी जीव होते हैं। उसमें दो प्रकार के होते हैं, कोई वांछा सहित करते हैं, कोई निष्काम भाव से भी करते हैं। निष्काम भाव से करते हैं वो जल्दी से आगे आ जाएंगे आत्मकल्याण के मार्ग में, वांछा सहित करेंगे तो उनको थोड़ी देर लगेगी, लेकिन हो सकता है कि उसका चांस लगे, नहीं भी लगे उसका भरोसा नहीं है, क्योंकि आज तो भक्ति करता है कल विरोध भी कर सकता है, उनको कोई भान तो है नहीं, तो उनका कोई भरोसा नहीं।
वांछा के क्या क्या प्रकार हो सकते हैं?
वांछा के प्रकार तो बहुत से होते हैं, लेकिन जिसको जिसकी जरूरत है उसकी वांछा होती है, जिस काल में जिसकी जरूरत होती है उसकी वांछा पैदा हो जाती है। तो उसमें प्रकृति दो काम करती है, प्रकृति का विभाग करे तो दो ही प्रकृति है, एक लोभ की और एक मान की, दोनों की वांछा होती है। लोभ की प्रकृति में तो बहुत से पदार्थ हैं जगत के, किसी को निर्धनता हो तो धन की वांछा रहती है, किसी को निर्धनता नहीं है लेकिन अनेक प्रकार की उपाधियां हैं, दूसरी दूसरी प्रतिकूलता है तो इनकी वांछा रहती है, किसी को परिवार की वांछा रहती है, किसी को रोग होता है तो निरोगता की वांछा होती है, अनेक प्रकार की वांछाएं होती है। क्योंकि संसार में प्रतिकूलताएं तो आती ही है, उपाधियां तो होती है, तो उसको मिटाने की वांछा अनेक प्रकार की होती है, वो लोभ के कारण से होती है, उसमें लोभ प्रकृति मुख्य है। और किसी को मान प्रकृति की मुख्यता हो जाती है, तो वो भक्ति करते हुए भी मान की वांछा करते हैं कि हमारा स्थान है वो आगे रहे, हमको मान मिले, समाज में मान मिले, कुटुंब में मान मिले, जिस संप्रदाय में जाते हैं उस संप्रदाय का मान मिले। और मान वांछा से नहीं मिलता है, उस प्रकार का उदय होता है तो मान मिलता है, उदय नहीं होता है तो चाहने पर भी नहीं मिलता है। उदय में नया कर्म मान लेता है जीव, अगर उदय होता है और खुद को वांछा रहती है, दो बात साथ में होगी मर गया, एक तो खुद को वांछा हुई और उदय आया, मान का और मान देने लगे, बस खत्म, उनको तो इतना रस चढ़ जाएगा उतना रस चढ़ जाएगा कि वो रस तोड़ना छोड़ना वो पसीना आ जाएगा, उसमें बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो उस काल में तो भयंकर नुकसान होता है, कितना नुकसान होता है, भयंकर नुकसान होता है। तो वहां थोड़ा जागृत रहना योग्य है, सतर्क रहना योग्य है कि ऐसे हम कभी भी मान में आ जाए नहीं। लोभ से भी मान ज्यादा बुरा है, लोभ तो क्या है कि पदार्थ की प्राप्ति होने से चलो बीमारी थी तंदुरुस्ती आ गई, परिवार में लड़का नहीं होता था हो गया, चलो निर्धनता थी मैं दो पैसा कमा लिया हो गया, फिर वो प्रार्थ का योग होता है और मिल जाता है। इन मान पर चढ़ गया, ये मान के घोड़े से उतारना ये बहुत तकलीफ की बात है, यहां से उतर नहीं सकता जी। एक प्रकार से हमको स्वयं को इसके लिए बहुत सोच रहता था, सोच मैंने करुणा के विचार रहते थे, कोई किसी एक व्यक्ति को ख्याल में रख करके वो बात लिखी है कि एक प्रकार से हमको स्वयं को इसके लिए बहुत सोच रहता था, परंतु उसका कल्याण का विचार करके इस सोच को विस्मरण किया है। किसी व्यक्ति ने अपेक्षा रखी होगी कृपालु देव से कि इससे हमको बहुत लाभ होगा, तो हमको लगा कि ऐसे भाव उनको क्यों उदय में आता है, हमारे से बाह्य पदार्थ की वांछा रखे ऐसे भाव उनके उदय में क्यों आता है, हमारे पास तो आत्मकल्याण की भावना रखे तो उसका कल्याण हो जाएगा हमेश के लिए, फैसला हो जाएगा, लेकिन ऐसा भाव उसको क्यों उदय में आता है। फिर भी लगा कि ठीक है, संग में तो उसका संग तो रहता है, उनको संग तो रहता है, इस लोभ के कारण से भी वो संग तो करता है, तो हमने वो बात को विस्मरण कर दिया कि चलो अब ये वांछा करता है तो भले ही करता है लेकिन संग में तो रहता है। कितनी करुणा थी, ऐसा नहीं है कि उसका दोष का वो पोषण कर रहे हैं, वह ऐसी बात नहीं है कि वो उस दोष का पोषण कर रहे हैं, लेकिन उनके पर करुणा है, मौका मिलने पर उनको बराबर ठीक कर देंगे, लेकिन वो देख करके द्रव्य क्षेत्र काल भाव को देख करके, ये ज्ञानियों की पॉलिसी होती है, नीति होती है कि किसी भी जीव का अहित नहीं हो, हित ही हो, ऐसी नीति वो रखते हैं, चाहे कोई गुणवान हो चाहे कोई गुणवान नहीं हो, अवगुण वाला हो तो भी इसका हित होवे, यही ज्ञानी की नीति होती है। तो कभी कभी कोई बात बोलते हैं, कभी जानबूझ के भी नहीं बोलते हैं। हाँ नहीं बोलने में भी इसका कल्याण है और बोलने में भी इसका कल्याण है। नहीं बोलते इसका मतलब वो नहीं कि इसका दोष का वो पोषण करना चाहते हैं, लेकिन कभी बोलने से नुकसान ज्यादा हो जाए तो नहीं भी बोलेंगे, ऐसा भी करना पड़ता है। कहते हैं कि हमने वो बात का विस्मरण कर दिया। मन वचन काया के योग में से जिसको केवली स्वरूप भाव होने से अहम भाव मिट गया है, ऐसे जो ज्ञानी पुरुष इनके परम उपशम रूप चरणारविंद, उसको नमस्कार करके वारंवार उसका चिंतन करके वही मार्ग में प्रवृत्ति की आप भी इच्छा किया करो, ऐसा उपदेश करके यह पत्र को मैं समाप्त करता हूं। पत्र समाप्त करने की पद्धति देखी। मैं ये पत्र समाप्त करता हूं ऐसा नहीं कहते हैं, ऐसे ज्ञानी का मैं चरणारविंद की चिंतना करके और आप भी ऐसे मार्ग में लगो ऐसी इच्छा करके इसको समाप्त करता हूं। किसी भाग्यवान को पत्र लिखा है, मालूम नहीं है किसको लिखा है, बहुत बढ़िया पत्र लिखा है। क्या लिखते हैं, ज्ञानी का विशेषण क्या रखा है, बहुत अच्छी बात लिखी है कि मन वचन काया के योग में से अहम भाव मिट गया है। मैं मन वाला हूं, मैं ऐसी ऐसी बातें अच्छी बातें बोलने वाला हूं, या मैं ऐसा शरीर वाला हूं, मन वचन और काया तीनों का योग होता है जीव को संसार में, योग मैंने जुड़ा संग होता है, संयोग होता है, योग मैंने संयोग। किसी को शरीर जैसा भी मिलता है, मैं ऐसा हूं, यही परिणति उसकी चालू रहती है। जो भी जैसा शरीर मिलता है, मैं ऐसा हूं, वो परिणाम इसको निरंतर चालू रहता है। कोई अच्छा बोल सकता है तो उनको ये परिणाम चालू रहता है कि मेरे जैसे कोई कम बोल सकते हैं, मैं बहुत अच्छा बोल सकता हूं। और कोई नहीं बोल सकता है तो उनको ये लगता है कि मैं बोल नहीं सकता हूं, मैं ऐसा हूं कि मैं बोल नहीं सकता हूं, मैं ऐसा हूं, ऐसा आम भाव रह जाता है। और किसी के मन के विकल्प इधर उधर जाते हैं तो उनको लगता है कि मैं ऐसा मन वाला हूं, मेरे तो ऐसे भाव होते हैं, मेरे तो ऐसे परिणाम होते हैं। उसमें से अहम भाव जिसका छूट गया है, निकल गया है, क्यों? केवली स्वरूप भाव होने से, ये बहुत बढ़िया बात लिखा है, आत्मभाव शब्द नहीं लिखा, ज्ञान भाव शब्द नहीं लिखा, और कोई शास्त्र की परिभाषा वाला शब्द नहीं लिया है। जिसको केवली स्वरूप भाव होने से, जैसा केवल ज्ञानी परमात्मा है वैसा ही बिल्कुल मैं हूं, रंच मात्र मेरे में कोई फर्क नहीं है, ऐसा भाव होने से वर्तमान संयोग रूप जो मन वचन काया है उसमें अहम भाव जिसका छूट गया है, मिट गया है, ऐसे जो ज्ञानी पुरुष हैं, ऐसे ज्ञानी पुरुष के उपशम स्वरूप चरणारविंद है क्या? चरणारविंद में भी उपशम स्वरूप लिखा है। इसकी मुखमुद्रा तो उपशम स्वरूप है ही, वो कहने की जरूरत नहीं है। क्या कलम चलाते हैं कभी कभी, तो उसके चरणारविंद भी उपशम स्वरूप है। मतलब क्या होता है इसका, कि इसके चरण के दर्शन करते हैं तो हमको उपशम भाव होता है। क्या? कि इनके चरण के दर्शन से ही हमको उपशम भाव होता है, तो वाकई वो चरण ही उपशम स्वरूप है। फिर मुद्रा तो कितनी उपशम स्वरूप होगी? हाँ, उपशम मैंने शांत भाव, उपशम मैंने क्या? शांत भाव, कि जिसके चरण के दर्शन से हमारे आत्मा में शांति होती है। इनकी मुख मुद्रा का दर्शन करने से हमको कितनी शांति होती होगी? ऐसे चरणारविंद को नमस्कार करके, देखो ज्ञानी के प्रति भक्ति करने की भी एक अजीब सी पद्धति है। कृपालुदेव खुद ज्ञानी है और ज्ञानी की भक्ति करते हैं, गजब की भक्ति करते हैं। वो चार नमस्कार वचन है ना, वो छह पद के पत्र में चार नमस्कार वचन लिए हैं, कैसे कैसी बातें लिखी हैं। उस ऐसे चरणारविंद को नमस्कार करके और बार बार इस चरणारविंद की चिंतना करके, देखो हमको तो इसके चरणारविंद का चिंतन चलता है, इतनी शांति मिलती है इनके दर्शन करने से, इतनी शांति मिलती है, तो हमारा हमको तो इसका चिंतन चलता है। और वही मार्ग में प्रवृत्ति की वांछा आप किया करो, ऐसे ज्ञानी पुरुष के मार्ग में आपके परिणाम की प्रवृत्ति होवे, ऐसी वांछा आप किया करो, ऐसी भावना रख करके, ऐसी मंगल कामना रख करके मैं इस पत्र को समाप्त करता हूँ। समाप्त करने की पद्धति देखो, yes। और आखिर में अपने लिए लिखते हैं कि विपरीत काल में एकाकी होने से उदास। ये बड़ा पंचम काल विपरीत काल है। पंचम काल तो हमेशा विपरीत होता ही है, लेकिन ये पंचम काल तो हुंडा सर्पिणी का पंचम काल है। हुंडा हुंडक हुंडक मैंने बहुत कद्रूप होता है उसको हुंडक कहते हैं। क्या बहुत आधा टेढ़ा विचित्र होता है, खराब होता है उसको हुंडक कहते हैं। ये हुंडा सर्पिणी काल है तो बहुत विपरीत काल है। उसमें मैं एकाकी हूँ, अकेला हूँ। जिस बर्फ क्षेत्र में ज्ञानियों के उतने तौलियां होती होनी चाहिए कि जहाँ बार बार सत्संग मिला करे, जगह जगह पे ज्ञानियों का सत्संग मिला करे, इतने ज्ञानी होने चाहिए। आजकल मैं अकेला हूँ और अकेला होने से मैं उदास हूँ। कहीं भी मुझे उत्साह आता नहीं है। कभी कभी तो ऐसा लिखा है कि अरे ये बात इतनी स्पष्ट है, इतनी खुली करके रख दी है परमार्थ की बात, फिर जीव क्यों पुरुषार्थ नहीं करते हैं। हमको आश्चर्य होता है, प्रश्न होता है कि जीव पुरुषार्थ क्यों नहीं करते हैं, पुरुषार्थ में क्यों नहीं लगते हैं। आत्मकल्याण सामने दिखे पर पुरुषार्थ नहीं करते, ये क्या बात है, समझ में नहीं आ रही है कि ऐसी कौन सी चीज है संसार में कि जो अपने आत्मकल्याण से भी बढ़कर है। ऐसी कौन सी चीज है, आत्मकल्याण तो ऐसी चीज है कि अनंत काल के लिए अनंत सुख की प्राप्ति करा दे और जगत के किसी भी प्रकार के दुख क्लेश का अनुभव ही नहीं होने दे, उसको होने नहीं दे। ऐसी बड़ी चीज है और वो बात खुली है, मार्ग खुला है, कोई भी आ सकता है। कल के परिणाम कैसे भी हो, अरे एक मिनट के पहले कैसे भी परिणाम हुए हो, पलटा खाया कि पलटा खाया, पूरी दिशा परिणाम के बदल जाती है। तो ऐसी कौन सी चीज है कि इससे बढ़कर है, आश्चर्य होता है कभी कभी कि लोग क्यों पुरुषार्थ नहीं करते हैं। तो आखिर में ऐसा लिख दिए कि विपरीत काल में मैं अकेला होने से उदास हूं, मुझे उदासीनता रहती है, कहीं भी उत्साह नहीं आता है। और ऐसा मौका मिलता है तो ऐसी चिट्ठी लिख देते हैं। यहाँ तक